आज हम खौफ के ऊपर सीखेंगे और हम सभी जितने भी यहां बैठे हैं या जितने भी हम बहसियत इंसान होते हुए हम तमाम जो है वो खौफ का तजर्बा अपनी जिंदगी में रखते हैं, चाहे हम ज्यादा खौफ ज्यादा रहे हों या कम खौफ ज्यादा हों, लेकिन खौफ हमारी जिंदगी में एक ऐसा नेचुरल पावरफुल एलिमेंट है जिससे हम हमेशा से जो है वो नबर्द आजमा रहे। और कई दफा तो ऐसा हुआ कि हम खौफ के अंदर रहते रहते अभी भी जिंदगी गुजार रहे हैं। वी आर स्टिल इन द फियर। अब ये खौफ बेसिकली है क्या, हम सब समझते हैं। हम चीजों से खौफ ज्यादा होते हैं, हम इंसानों से खौफ ज्यादा होते हैं, हम दुनिया की तमाम तर हालात से खौफ ज्यादा होते हैं, हम अबलीस से और उसकी कुवतों से खौफ ज्यादा होते हैं, और फिर हम खुदा से भी खौफ ज्यादा होते हैं। तो खौफ जो है एक नेचुरल एलिमेंट है, एक पावरफुल एलिमेंट है जो हमेशा से इंसान के अंदर रहता है। ये इंसान के अंदर रहता है और ये ऐसी बायोकेमिकल जो है हमारे अंदर प्रोड्यूस करता है जिससे कई दफा हमारे जो है ना सेंटिमेंट्स जो हैं वो जाग जाते हैं और कई दफा हम ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं जिसमें हमारे इमोशंस जो हैं, हमारे जज्बात जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाते हैं जिससे हम कई दफा बीमार पड़ जाते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फोबिया के अंदर चले जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो खौफ के आलम में इस हद तक बढ़ जाते हैं कि ये जो है खौफ जो है उनके लिए एक थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाता है, डेंजरस फिजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाता है और वो नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं। ऐसा है मेरे साथ रहना है आपने, ऐसा है हाथ को हिलाते रहना है, ऐसा है क्या आप इस नफ्सियाती प्रॉब्लम में से निकलना चाहते हैं? कौन कौन निकलना चाहता है? मैंने बहुत सारी बहनों और भाइयों को वो बहसियत बातों में नॉर्मल लगते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन उनके अंदर खौफ छुपा होता है और वो अपने खौफ को निकालते नहीं है। वो अपने खौफ के अंदर जिंदगी गुजारना चाहते हैं और मेडिकली तौर पर ये इंतहाई एक खतरनाक हालत है इंसान की जब हम जिंदगी खौफ में गुजारते हैं। एक इंसान जब खौफ में होता है तो वो उसका पूरा घराना जो है वो उसकी वजह से अफेक्ट होता है और वो सारे घराने का, अगर वो सरबरा है घर का तो फिर तो सारा घराना ही खौफ ज्यादा है। आपने दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो अबलीस से इंतहाई खौफ ज्यादा होते हैं, वो जादू से खौफ ज्यादा है, वो लोगों से खौफ ज्यादा है। किसी कोई चीज तो नहीं मैंने खुवा छड़ी, ने किसी ने मेरे से जादू तो नहीं कर छड़िया, किसी ने मेरे पे कोई तोहम परस्ती तो नहीं की, कोई मेरा मुखालिफ है, कोई मेरा मेरे खिलाफ महाजराई कर रहा है। और जो फियर है ये बहुत ही डेंजरस हालत इख्तियार कर जाता है और हम पैनिक डिसऑर्डर का शिकार भी हो जाते हैं, सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं, डिसऑर्डर होता है, फोबिया क्रिएट हो जाता है और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश में PTSD भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही इंतहाई खतरनाक हालत है, आए खौफ के अंदर से निकलने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। और खौफ के अंदर से निकलने का एक ही वाहिद वसीला और तरीका है, मैं आपको सही बता रहा हूं, दुनिया की तमाम तर कुवतें, किताबें, तालीम और अलूम आपको इस मेंटल डिसऑर्डर से नहीं निकाल सकती। दुनिया की तमाम तर चीजें जो हैं आपको ये सॉलिड फेथ प्रोवाइड नहीं कर सकती जिसके ऊपर आप खड़े होकर आप खौफ خوف کے عالم میں سے نکل جائے. اور ابلیس کے ساتھ اس جنگ کے نتیجے میں میں بڑی ہی فتح مندی کے ساتھ غالب آیا ہوں. اور جب میں غالب آیا ہوں تو میں ان تمام دوستوں کو, عزیزوں کو اور ان تمام لوگوں کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ خوف ہے کیا. یہ ایک بہت ہی پاورفل ایلیمنٹ ہے, یہ ایک بہت بڑی ابلیس کی فورس ہے جو ہمیں خدا سے, کلام سے اور اس کے جلال میں بڑھنے سے روکتی ہے. یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس میں ہم زندگی جب گزارتے ہیں تو ہم کبھی بھی خدا کی برکتوں کو نہیں دیکھ سکتے. خوف کا جو اپوزٹ ہے, کوئی بتا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ خوف کا جو اپوزٹ ہے, اینی باڈی, خوف کا متضاد کیا ہے؟ ڈر تو اس کا مترادف ہو گیا نا, متضاد بتائیں جو اس کا اپوزٹ ہے. بائبل کی روح سے میں بتاتا ہوں, خوف کا جو اپوزٹ ہے وہ ایمان ہے. ایک طرف ایمان ہے, ایک طرف خوف ہے. ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہے. جب آپ خوف میں زندگی گزارتے ہیں تو آپ کا ایمان جو ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے, آپ کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے تو آپ خوف زدہ ہیں. اگر آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو آپ کا خوف کم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لازم الملزوم چیزیں ہیں, ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری چیز کم ہوتی ہے, دوسری چیز بڑھتی ہے تو ایک چیز کم ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خوف نہیں ہے تو ایمان زیادہ ہے, اگر ایمان کم ہے تو خوف بھی زیادہ ہے. ہللویا, اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ آگے چلیں. ہللویا. تو جب ہمارے اندر نیچرل خوف کریٹ ہوتا ہے تو ایسے ہمارے اندر باڈی کے اندر کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جس میں ہم جو ہے نا کئی دفعہ ایسی فضول باتیں کر جاتے ہیں, ہم فضول حرکتیں شروع کر دیتے ہیں, ہمارا ہارٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, ہم بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور خوف کے اندر زندگی گزارنے والوں کا کچھ جسمانی کنڈیشن جو ہے نا ہمیشہ خراب رہتی ہے. ایک نمبر ایک, وہ بلڈ پریشر کے مریض جلدی بن جاتے ہیں, وہ ڈائبیٹک کے پیشنٹ بن جاتے ہیں, وہ معدے کے مریض بن جاتے ہیں, وہ دماغی مریض بن جاتے ہیں. میرے عزیزو, کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بائبل مقدس اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام میں تو بائبل کیا بیان کرتی ہے؟ بائبل بڑی واضح طور پر خوف کے اوپر بڑے ہی واضح انداز سے ایک ایسا ہمیں محاذ فراہم کر دیتی ہے جس سے ہم ابلیس کے اس خوف کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں. کلام کہتا ہے امثال کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی 25 آیت میں, امثال 12 باب اور اس کی 25 آیت میں بائبل مقدس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں لکھا ہے آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے. Anxious heart weighs a man down. Anxious heart جو ہے وہ انسان کو کمزور بنا دیتا ہے. ہماری عادت کے اندر خوف شامل ہو گیا ہے, ہم عادتاً خوف زدہ ہیں, ہم عادتاً ابلیس کے غلام ہیں, ہم عادتاً جو ہے وہ خوف کے اندر, غلامی کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں. ہماری یہ عادت ہے کہ ہم فکر مندی رکھتے ہیں اور بے جا فکر مندی ہے, اینکشس ہارٹ کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں. और अच्छी बातें कम ही करते हैं अपनी जिंदगी में। अगर कोई अच्छी बात कर ले तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, हम कहते हैं ये तो हमेशा अच्छी बातें करता है। अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, मुस्बत बातें, दिल पसंद बातें, दिलकश बातें, और ऐसी बातें जो कलाम और ईमान से भरी हैं, वो हमारे घर में कितने परसेंट होती हैं? आप जरा गौर करें, आपके कलाम में या आपके गुफ्तार में या आपके घर के अंदर, जब आप घर में बैठकर अपने माँ बाप से, बहनों भाइयों से बातें करते हैं, तो उसका दारोमदार किसके ऊपर होता है? क्या आप ऐसी बातें करते हैं जिसमें दिलकश बातें हैं? अगर एक बीमार शख्स को डॉक्टर ये कह दे कि आप कल मर जाएंगे, तो वो तो आज ही मर जाएगा, वो कल का इंतजार नहीं करेगा। अगर एक बीमार शख्स को यह कहा जाए कि भाई आप आज ठीक हो जाएंगे, तो वो कल की बजाय आज ही ठीक हो जाएगा, और उसकी जिंदगी जो है, जितनी भी खुदा ने इस दुनिया में लिखी है, वो अपनी तमाम तर जिंदगी में खुशी और शादमानी के साथ जिंदगी गुजारेगा। मेरे अजीजों, खौफ के साथ जिंदगी गुजारना अबलीस के साथ जिंदगी गुजारना है, खौफ के अंदर जिंदगी गुजारना गुनाह में जिंदगी गुजारना है, खौफ के अंदर जिंदगी गुजारना एक फिक्रमंदी और दिल के दब जाने के साथ जिंदगी गुजारना है। कलाम क्या कहता है हमें? जबूर 34 उसका चौथा बाब, कलाम क्या कहता है? मैं खुदावंद का तालब हुआ, आई सॉट द लॉर्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ हिज वर्ड, खुदा के कलाम के इख्तियार का तालब हुआ हूं, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी है, मेरी सारी दहशत से। खौफ जो है हमें गुलाम बना रहा है, अबलीस का खौफ है, नौकरी छूट जाने का खौफ है, बेरोजगारी का खौफ है, पैसे की कमी का खौफ है, हर रोज नया खौफ हमारे अंदर जन्म लेता है, हर रोज हम मौत के खौफ के साथ जिंदगी गुजारते हैं। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, फिक्र करके तुम क्या अपनी घड़ी में से एक सेकंड भी आप बढ़ा सकते हो? अगर फिक्र करके आप अपनी जिंदगी का एक सेकंड भी बढ़ा नहीं सकते, तो फिक्र क्यों करते हैं? खुदावन ने कहा कि इन चरिंद परिंद हैवानात हशरात को देखो, ये कहां से खाते हैं, कहां से क्या ये बोते हैं, क्या इनका ओढ़ना बिछोना कौन इनको फराहम करता है, कौन इनके लिए मुहैया करता है? खुदावन ने कहा कि शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, मगर मेरे तालब, हालेलुया, मेरे तालब किसी चीज के मोहताज ना होंगे। अगर खौफ है तो ईमान नहीं है, अगर ईमान है तो खौफ कम है। हालेलुया, आए अपने ईमानों को बढ़ाना शुरू करें, ईमान को बढ़ाना शुरू करें। कलाम कहता है मैं खुदावंद का तालब हुआ। जब हम उसके तालब होते हैं, जब हम उसकी अथॉरिटी को, उसकी पावर को दिल से कबूल कर लेते हैं कि इस दुनिया में खुदा मौजूद है और वो अबलीस से बड़ा है, तो फिर आपको किसकी बात माननी है, बड़े की या छोटे की? आप किसकी टीम में हैं, बड़े की या छोटे की? किसकी किसकी टीम में है? बड़े की टीम में। तो बड़े की टीम में है तो फिर अपने माइंड को भी बड़ा करें, अपने ख्यालों को भी बड़ा करें, अपनी सोचों को भी बड़ा करें, अपनी अथॉरिटी को और अपनी पावर को जो खुदा के कलाम में मौजूद है। मेरे अजीजों, जब खुदा यीशु मसीह ने कहा शागिर्दों को के ठहरे रहना जब तक कि तुम्हें कुवत का लबास ना मिल जाए, और जब कुवत आती है तो आपके अंदर एक कुवत अथॉरिटी के साथ आ जाती है, और वो अथॉरिटी ये है कि आप इस दुनिया में अबलीस और उसकी सारी कुवतों के ऊपर गालिब आने की कुवत रखते हैं। हालेलुया, ये है आपका ईमान जो आपके खौफ के ऊपर गालिब आ जाता है जब आप अंधेरों से खौफ खाते हैं, जब आप दुनिया से खौफ खाते, जब आप बीमारियों से खौफ खाते हैं, जब आप मौत से खौफ खा जाते हैं और अपने ईमान को चंद पैसों के लिए बेच देते हैं, चंद पैसों के लिए। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया और उसने यीशु को पकड़वा दिया चंद पैसों के लिए। मेरे अजीजों, खुदा क्या बयान करता है, कलाम क्या कहता है। पहला पत्रस उसका पांचवा बाब उसकी छठी और सातवीं आयत अगर देखें, बाइबल मुकद्दस क्या बयान कर रही है, गौर से सुनिए। पहला पत्रस उसका पांचवा बाब, कलाम कहता है, बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, फरोतनी से रहो। कैसे रहो जी? खुदा के कवि हाथ के नीचे कैसे रहने की जरूरत है? फरोतनी से, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। और आगे क्या लिखा है? अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। अगर मैं इस मेज पर बैठ जाऊं तो आपके ख्याल में मेज को मेरी फिक्र है? क्यों जी जफर साहब, मेज को मेरी फिक्र है कि नहीं है? अगर मेज पर को मेरी फिक्र ना हो या ये टेबल को मेरी फिक्र ना हो तो ये मुझे गिरा दे। मैं टेबल पर बैठा हूं इस ईमान के साथ, इस भरोसे के साथ, इस इख्तियार के साथ, इस पूरे मुसम्मम ईमान के साथ कि ये टेबल जो है मुझे गिराएगा नहीं। तो मैं बैठ गया हूं, अब मुझे पता है कि मैं इस पे खड़ा भी हो जाऊंगा तो ये मुझे गिराएगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये सॉलिड वुड है, ये मजबूत बना हुआ है, इसको कोई जुम्बश नहीं हो सकती, इस पर कोई जोर जबर नहीं हो सकता, इसको कोई गिरा नहीं सकता। कलाम क्या कह रहा है? अपनी फिक्र मुझ पर डाल दे, अपना सारा जोर वजन मुझ पर डाल दे, अपनी सारी टेंशन मुझे दे दे, अपना खौफ मुझे दे दे, अपनी डिप्रेशन फोबिया मुझे दे दे, अपनी तमाम तर मेंटल डिसऑर्डर मुझे दे दे, मुझे तेरी फिक्र है, मुझे तेरी फिक्र है, मुझे तेरी फिक्र है। मेडिकली खौफ की ट्रीटमेंट पता क्या है? खौफ को ट्रीट करते हैं, इसका एक मेथड है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये डिसेंसिटाइजेशन का मतलब यह है कि आपके जो सेंसेस हैं जो आउट ऑफ ऑर्डर हैं उनको कंट्रोल में कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चूहे से डरते हैं तो डॉक्टर आपसे बात करना शुरू करेगा,
आपको पता है चूहे कितने किस्मों के हैं? आप कहेंगे नहीं, मेरे से बात ना करें चूहों के साथ, नहीं आई डोंट लाइक इट, वो बार बार आपसे बात करेंगे। चूहे आपको पता है ये काले होते हैं, ये गंदे होते हैं, इनकी आंखें, इनकी दुम आपने देखी है कितनी गंदी होती है, तो वो आपसे बात करेंगे और आप उनसे बार बार कहेंगे नहीं आप मुझसे बात ना करें, लेकिन वो आपको कहेंगे नहीं आप यहाँ कोई चूहा नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं, जहाँ आप बैठे हुए हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं, आपको चूहा नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपसे बात करना शुरू करें। वो एक हफ्ते, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, चार हफ्ते सिर्फ आपको चूहों की वीडियो दिखाएंगे, वो चूहे की वीडियो दिखाएंगे, और फिर जब चार को हफ्ते गुजर जाएंगे फिर वो आपको प्लास्टिक का चूहा देंगे। प्लास्टिक का चूहा जो है आप पकड़ेंगे, उसको कुचलेंगे, उसको मारेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको रियल चूहा दिखा देंगे। आपकी डिसेंसिटाइजेशन हो रही है, इतना मुश्किल लफ्ज है, डिसेंसिटाइजेशन, यानी कि सिस्टमैटिकली आपको डिसेंसिटाइज किया जाता है, आपको बार बार उन चीजों को दिखाया जाता है जिससे आप खौफजदा हो रहे हैं। तो बाइबल जो है वो भी आपको बार बार एक ही चीज बयान करती है कि आप ईमान रखें। अगर आप खौफजदा हैं किसी चीज से तो उसके लिए दुआ करना शुरू करें। सबसे पहले मैं आपको सही बताऊं, कुछ चीजें दुआ के बगैर नहीं जाती हैं, कुछ चीजें दुआ के साथ ही जाती हैं। और अबलीस का खौफ जो है, डिमोनिक खौफ जो है, अबलीसी कुवतों का खौफ जो है, बदरूहों का खौफ जो है, और कुछ ऐसे फोबियाज हैं जो दुआ के बगैर नहीं जा सकते। दुआ करना शुरू करें। अगर आप अकेले में दुआ करने से डरते हैं, एक दो लोगों के साथ दुआ करें। कभी कभी अकेले दुआ करें। आप देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर एक दो दफा और दुआ करें, फिर आप देखिए मुझे कुछ नहीं हो रहा, फिर आप ज्यादा अकेले में दुआ करें। अपनी जो है वो मेंटली डिसेंसिटाइजेशन करें, और उससे फिर क्या होगा, आप आहिस्ता आहिस्ता साइकोलॉजिकली आप अपने फियर को, खौफ को रिड्यूस करना शुरू कर देंगे। कलाम क्या कह रहा है, अपनी फिक्र मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है, लूका की इंजील में देखिए, खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज, लूका 12वां बाब उसकी 22वीं आयत में क्या लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं, शागिर्दों से कहते हैं अपनी जान की फिक्र ना कर क्योंकि जान खुराक से बढ़कर नहीं है। फॉर दिस रीजन आई टेल यू, डू नॉट वरी अबाउट योर लाइफ एज व्हाट यू विल ईट, और अबाउट योर बॉडी एज टू व्हाट यू विल वेयर। खुराक से बढ़कर नहीं है। हम क्या खाएंगे और ना ही इस बात की फिक्र करें कि हम क्या पहनेंगे। खुदावन ने कहा देखो क्या ये चरिंद परिंद हैवानात हशरात क्या काटते हैं, क्या बोते हैं, क्या पहनते हैं, तो भी खुदावंद इनको पहनने को भी देता है। इनका पहनावा देखे कितना खूबसूरत है, यहां रोज मुझसे और आपसे अच्छा खाते हैं, ये हर रोज हमसे ज्यादा खूबसूरत अंदाज से बगैर किसी फिक्र के ये जिंदा रहते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है इमसाल 3रा बाब, उसकी 5वीं से 8वीं आयत के अंदर क्या लिखा है,
सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर। हालेलुया, तवक्कल करें। जब भी खौफ आपके दिल में आता है, जब भी खौफ आपके जहन में आता है, जब भी खौफ आपकी सोच को हिट करता है, तो अपने आप से यह सवाल करें, अपने आप से सवाल करें, आप खुदा की बादशाहत में है। आप अपने आप से सवाल करें, मैं दुआगो शख्स हूं, मैं रूहानी शख्स हूं, और मैं खुदा की तरफ हूं, और बड़ा कौन है? खुदा बड़ा है। और खुदा की कुदरत का यकीन रखें, उन तमाम कामों पर गौर करें जिसमें खुदा ने आपकी मदद की, मौजजाती तौर पर गौर करें, और फिर आप उस पर गालिब आना शुरू हो जाएंगे। कलाम कहता है, सारे दिल से ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, और अपने फहम पर तकिया ना करें। हम कई दफा दुनिया की तालीम पर ज्यादा फोकस करते हैं, हमारा ध्यान ज्यादा लोगों की बातों में होता है। नहीं, उन्हें यह किया सी, ऐसा हो जाना है, ऐसे हो जाना है, लोग ये कहते हैं, दुनिया ये कह रही है, रुझान यही है, ऐसा ही होता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। अपनी फहम पर तकिया ना करें, अपनी अकल पर तकिया ना करें। बनी इसराइल कौम जब मुल्क मिस्र की गुलामी से निकले, तो उनको यह पता ही नहीं था कि समुंदर भी खुल जाएगा। हालेलुया। उनको नहीं पता था। इंसानी अकल जो है, जहां पर खत्म हो जाती है, वहां से खुदा शुरू होता है, वहां से खुदा की कुदरत शुरू हो जाती है। पीछे फौजी हैं और आगे खुला ठाठे मारता समुंदर, गहरा समुंदर, और क्या होता है? खुदा मूसा से कहता है, इनको चुप करा, खामोश, खामोश इनको करा, इनको कहे खामोशी से खुदा के जलाल और उसकी कुदरत को देखे। और खुदा ने कहा, समुंदर के ऊपर अपनी लाठी को मार, और समुंदर दो हिस्से हो जाएगा। अपने फहम पर तकिया ना करें, और समुंदर जो है वो उनकी आंखों के सामने दो हिस्से हो गया, और वो समुंदर के अंदर से खुशकी के रास्ते में से निकल कर वो चले गए। ये है मेरे जीजो ईमान, ये है ईमान। जब आपका खौफ आपको हिट करता है, तो ईमान पर खड़े हो। कलाम कहता है, सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर, अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी अंडरस्टैंडिंग को हर वक्त तरजीह ना दिया करें। हम कई दफा उसको तरजीह देते, नहीं यार, दुनिया ये कह रही है, साइंस ये कहती है, डॉक्टर ऐ कह रहे हैं, मेडिकल साइंस ये कहती है, दुनिया की तमाम तर अलूम जो हैं वो यही कहते हैं, लेकिन खुदा कुछ और कह रहा है, खुदा कुछ और कह रहा है। खुदा के नजदीक दुनिया की तमाम तर चीजें जो हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, इस वक्त की कोई हैसियत नहीं है, इन दिनों की कोई हैसियत नहीं है, इन तमाम चीजों की कोई औकात नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है, वो जहां बोता नहीं है वहां से काट लेता है, जहां बखेरता नहीं है वहां से जमा कर लेता है। वो ना मुमकिनात का खुदा है, वो गैब का खुदा है, वो हय्युल कयूम खुदा है, जलाल से भरा हुआ खुदा है। बाइबल कहती है, सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल करें, अपने फहम पर तकिया ना करें, अपनी सब राहों में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा।
वो अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावन से डर। मैं कभी कभी कहता हूं, खुदावन ये खौफ कहां से आया है? इंसान के अंदर जब तूने इंसान को बनाया था तो क्या उस वक्त भी खौफ था? तो पाकुरु ने मुझे कहा, हाँ खौफ था, तब भी खौफ था, लेकिन तब सिर्फ खुदा का खौफ था। आदम और हवा सिर्फ खुदा से डरते थे, शैतान से नहीं डरते थे। जो खुदा ने हुक्म सादर किया था वो हुक्म ही एक खौफ की अलामत था, और ये हुक्म जो है इस बात को साबित करता है कि खुदा से वो डरते थे। लेकिन जब गुनाह आया तो एक और खौफ ने जन्म लिया, वो छुप गए, खुदा से छुपने लगे। और खुदा ने आवाज दिया, आदम तू कहां है? लेकिन एक और खौफ ने जन्म ले लिया था, और वो था अबलीस का खौफ, वो गुनाह का खौफ था, वो दुनिया का खौफ था, वो नंगेपन का खौफ था, गुनेगार हालत का खौफ था। और जब हम गुनाह की हालत में होते हैं तब भी हम खौफ ज़दा होते हैं, क्योंकि बीमारी और गुनाह सेम है। लेकिन अजीजो, आज इस दुनिया में खुदा का खौफ कम होता जा रहा है अबलीस के खौफ से। अगर आप निकलना चाहते हैं तो आए खुदावंद पर ईमान रखना शुरू करें। कलाम में लिखा है फिलिप्पियों के खत में, उसका चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत में, खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं उसकी कुवत के साथ सब कुछ करने की कुवत रखता हूं, सब कुछ करने की। आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू हिम हु गिव्स मी अ स्ट्रेंथ, जो मुझे कुवत बख्शता है। आप उसको कर सकते हैं, आप अपने खौफ पर गालिब आ सकते हैं। आए आहिस्ता आहिस्ता आज से खौफ पर गालिब आना शुरू करें। जिन चीजों से आप डरते हैं सिस्टमेटिकली उन चीजों को अपने उन सेंसेस के अंदर से निकालना शुरू करें। हमारे सेंसेस बचपन ही से कमजोर है। हम जब छोटे थे तो हमारे दिलों में खौफ बैठा दिया गया है। कई लोग तो कलाम पढ़ने का खौफ भी रखते हैं, कई लोग शैतान से डरते हैं कहीं शैतान उनको मारे ना। मैंने कई दफा लोगों को यह कहते हुए सुना, और उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम जब भी दुआ करते हैं तो हमें बहुत परेशानियां लाहक होती हैं। हम चर्च जाना जब शुरू कर देते हैं तो हमारे घर में जो है ना वो बहुत परेशानी होना शुरू हो जाती है। अगर हम खुदा की तरफ बढ़ते हैं तो शैतान हमें बहुत परेशान करता है। ऐसे बहुत सारे घराने हैं। तो इससे क्या होगा? क्या आप शैतान के साथ जिंदगी गुजारेंगे? क्या आप बेबरकती में, लानतों में जिंदगी, बीमारियों में जिंदगी गुजारेंगे? क्या आप अबलीस के साथ मिलकर इस जिंदगी में बरकतों का तजर्बा कर सकते हैं? नहीं मेरे जीसो, आए खड़े हो जाएं ईमान के ऊपर, आए अबलीस को बर्मला कहें, आए लानती अबलीस तू मेरा कुछ नहीं बगाड़ सकता। आए अबलीस से एक ललकार अबलीस की करो, और ये ललकार फतह की ललकार हो, ये ललकार आपकी आपके अंदर एक बड़ी ललकार हो कि मैं खुदा की कुदरत के साथ सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू हिम हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। मेरे अजीजो, आप सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं, चीजों से ना घबराएं। खुदा का बंदा पौलुस जो है वो बारहा मुसीबत में पड़ा। कलाम कहता है
وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں محنتوں میں، قید میں، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ بارہا موت کے خطروں میں رہا. میں نے یہودیوں سے 5 بار 1 کم 40 کوڑے کھائے، 5 بار 3 بار بیت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 بار جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں کے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابانوں کے خطروں میں، سمندروں کے خطروں میں، اور اسی طرح جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس اور مصیبت میں، اور فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں. میرے عزیزو، آج اگر ہم خدا کی برکتوں کو انجوائے کر رہے ہیں تو آئیں اپنے دلوں کو خوف کی اس لعنت سے آزاد کریں. خوف کامل محبت کو توڑ دیتا ہے. اگر آپ یسوع سے محبت کرتے ہیں تو خوف کے اندر زندگی نہ گزاریں، پورے طور پر یسوع سے محبت کریں، اس کی باتوں کا یقین رکھیں، اس پر ایمان رکھیں، اس کی باتوں کا یقین جانیں کہ واقعی ہی خداوند موجود ہے.